बाबा ने हम सभी को सत्य ज्ञान देकर जीवन जीना सिखाया है। जीवन सबसे अधिक कीमती होता है किसी मनुष्य का। इसको सुंदर बनाना, अपने जीवन का आनंद लेना, जीवन को सुख शांति खुशी से भर देना, ये अपने हाथ में है। क्या विचार है आप सबका, अपने हाथ में है या दूसरों के? ये सचमुच अपने हाथ में है। हम अपने चिंतन को जितना सुंदर विशाल बनाएंगे, विशाल, उतना ही जीवन श्रेष्ठ बनता जाएगा। तो एक विशेष ध्यान सबको देना है कि हमारे विचार महान बनते जाते हैं या वही छोटे विचार हैं जो पहले थे। विचारों की महानता हमारे जीवन की सुंदरता है। और ये बहुत अच्छी तरह सब ख्यालों में उतार लें कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना अपने हाथ में। इसके लिए कलयुग के अंत की कुछ चीजें हमें स्वीकार करनी ही होती हैं। ध्यान देंगे इस लाइन पर आप, ये कलयुग का अंत है, ये द्वापर भी नहीं है। सतयुग त्रेता तो है ही नहीं, पर ये द्वापर भी नहीं है, कलयुग का भी अंत है। इसमें हर बुराई अपनी अंतिम सीमा पर है। कुछ आत्माएं जो परम धाम से इसी जन्म में आई हैं, जिनका पहला ही जन्म है, वो आपको अच्छे दिखाई देंगी। लेकिन पुरानी आत्माओं में कई विकृतियां आ गई हैं। अगर आप इशारों से समझ लें तो उन सब को हमें स्वीकार करना ही होगा। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो स्वीकार कर नहीं पाता मनुष्य, और एक छोटी सी बात के कारण अपने पूरे जीवन को, अगले 84 जन्मों को बेकार कर लेता है। क्योंकि आप सब जानते हैं ये संगम योग अगले कल्प के निर्माण का युग है। हम ये नहीं सोचेंगे जो ड्रामा में है वो तो होना ही है। हमारे हाथ में आई है बाजी, अगले कल्प का हम कैसा भाग्य बनाना चाहें वो सब हमारे अपने हाथ में है, ये सोचना है सबको। मैं जिस बात को बहुत चिंतन में लाता हूं वो आपको बता रहा हूं। बाबा का महावाक्य सुना, वो कभी कभी आता है, जो नहीं सुनते रोज मुरली उनसे तो छूट ही गया होगा। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं। बाबा के सुंदर शब्द हैं, गुह्यर राज को लिए हुए। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं। अब ये हमें सोचना होता है, हम उससे क्या क्या लेंगे। सब इस पे स्वचिंतन करना। सुंदर अवसर हाथ में आया है, भगवान सम्मुख है, हमने उसे पहचान लिया है, वो हमारा हो गया है, उसका संपूर्ण प्यार हमारे लिए है, उसके सर्व खजाने हमारे लिए हैं, मुझे उससे क्या क्या लेना है। लेना सबके अपने हाथ में है। बाबा कहा करते थे, उदाहरण देते थे अव्यक्त में, एक खान है हीरो की, उसमें कहा जाता है जिसको जितना चाहे ले लो। एक व्यक्ति अपनी जेबें भर लेता है, यही काम काफी होगा पूरे जीवन के लिए। दूसरा व्यक्ति के पास थैला है, वो थैला भर लेता है, मौज से रहेंगे, सुंदर मकान बनाएंगे। तीसरा व्यक्ति अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आता है, हरियाणा में ज्यादा है ना, भर लेता है, बोरियों में भर भर के डाल देता है, बांटेंगे भी। चौथा व्यक्ति बड़ा ट्रक ले आता है, भर लेता है। और जो कुछ और आते हैं बुद्धिमान, वो क्या कहते हैं, ये खान भगवान की है और हम उसके बच्चे हैं, हम इस पूरी खान के ही मालिक हैं, सारी हमारी। अब सोच लो आप क्या क्या लेंगे बाबा से और हम क्या क्या ले सकते हैं। मैं दोनों बातें कह रहा हूं, लेना तो सब कुछ चाहिए, पर कईयों के बंधन, कर्मों का खाता, परिवारों की उलझन, माया का चक्रव्यूह करने नहीं देता। आप क्या ले सकते हैं बाबा से, उसकी प्लानिंग करें। चाहे लास्ट सोफास जाना हो, चाहे मनुष्य को कोई भी काम करना होता है, उसकी प्लानिंग होती है या नहीं, हर छोटी चीज की प्लानिंग होती है। आपको यहां आना था, कितने दिन से प्लानिंग की होगी हर एक ने, रिजर्वेशन 3-4 मास पहले ही करा देनी पड़ती है। घर में भोजन भी बनाना है, प्लानिंग करनी पड़ती है, क्या बनाना, उसके लिए क्या लाना है, हर चीज की प्लानिंग है। पुरुषार्थ की भी प्लानिंग होनी चाहिए। मैं दो बातों पर आपका ध्यान खिंचवाता हूं, पहले पुरुषार्थ की प्लानिंग और अपने जीवन के लिए कुछ सिद्धांत, कुछ नियम बना ही लेने हैं सबको। यहीं से बना कर जाओ, यहीं से बना के जाएंगे तो अच्छा रहेगा, घर जाते तो आधा नशा तो उतर जाता है ट्रेन में ही। इसलिए 5 कोई अच्छे डिसिप्लिन कहते हैं, सिद्धांत जीवन के जो सदा चल सके। ऐसे नहीं 3-4 दिन चलें बस फिर ढीले हो जाएं, ऐसे सिद्धांत जो जीवन भर चलें, जिनका पालन हम जीवन भर कर पाए, ऐसे अपने लिए विधि विधान सबको बनाना है। स्वयं का परिवर्तन बहुत जरूरी, दोनों बातों को लेंगे हम आगे। स्वयं का परिवर्तन बहुत जरूरी होता है ज्ञान में आने के बाद। ये ज्ञान कोई सत्संग नहीं है, ये पढ़ाई है और जिससे हमें अपना जीवन बदलना है। सब जानते हैं एक व्यक्ति बहुत शराब पीता था, ज्ञान में आते ही उसने शराब छोड़ दी। कितने लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति घर में क्रोध करता था, सब तंग थे, ज्ञान में आकर उसका क्रोध छूट गया। अब सबका कितना प्यार और दुआएं मिलती हैं और कैसे प्रचार हो जाता है सारे समाज में, दूर दूर तक। हम सुनते रहते हैं ये कहानियां, अच्छी कहानियां ये। पर इस व्यक्ति ने ये परिवर्तन किया, ब्रह्मा कुमारियों का नाम ही हो गया। तो बाबा का नाम भी होता है और अपना जीवन भी सुंदर बनता है। तो ऐसा कोई परिवर्तन लाएंगे अपने में, यही चिंतन कर लें उसका, जिसका प्रभाव परिवार पर और आसपास समाज पर गहरा पड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में किसी की सुनते ही नहीं है, सब लोग कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा जिद्दी है, बड़ा अभिमानी है, किसी की सुनता ही नहीं है। फ्लेक्सिबल हो जाएं, हल्के, सरल, लचीले लचीले, दूसरों की सुनने लगे, सम्मान मिलेगा। अगर छोटा सा उदाहरण, किसी पेड़ की टहनी लचीली हो, आपके पास बहुत ऐसे पेड़ होंगे जिनकी टहनियां लचीली होती हैं, हवा चलने लगे झूलती है ना, और जिसकी टहनी कड़क हो वो टूट जाएंगी। जो व्यक्ति कड़क है उसको बार बार टूटना पड़ता है, जो लचीला है, सरल चित्त है, साथ लेकर चलना जानता है, वो झूमता है खुशियों में। इसलिए ऐसा कोई परिवर्तन स्वयं में लाना है जो परिवार को भी दिखाई दे, समाज को भी, चारों ओर भी, ये करना है। बोलो पसंद है कई चीज, किसी को क्रोध आता हो त्याग करें। क्रोध ऐसी चीज तो नहीं जो जेब से निकाल के निकाल दी लो भाई छोड़ दिया। साधना करनी होगी अपने क्रोध पर विजय पाने की। और बाबा के बहुत बच्चों ने क्रोध छोड़ दिया है, बहुत सारा छोड़ दिया है, थोड़ा बहुत बचा है कहीं कहीं, वो भी छूट जाएगा। तो किसी में बोलने की आदत ज्यादा होती है। कोई एक बहन अपने पति से इसलिए दुखी है कि पति सबके आगे उसकी बहुत इंसल्ट कर देता है। अब बच्चे हैं उसकी, उनकी बहुएं हैं, सबके आगे उसकी उतार देता है पूरी। बेचारी रोती रहती है, बच्चे भी देखने लगते हैं उसे, और घर में जैसे मातम सा छा जाता है। एक ही व्यक्ति के कारण घर में खुशी नहीं रहती, शांति नहीं रहता, प्यार कम हो जाता है। सब क्या सोचेंगे, कब इससे पीछा छूटे, बाबा इसको उठा लो जल्दी। पर बाबा ऐसो को जल्दी नहीं बुलाता, क्योंकि जहां जाएंगे वहां परेशानी पैदा करेंगे। अच्छे लोग हों तो बुला भी ले, किसी परिवार में भेजूं तो वहां आनंद आ जाए। चेंज अपने में लानी है। बोलो तैयार हैं सभी? सोच लेना, तीन दिन है आपके पास। कोई एक बड़ी चेंज जो दिखाई दे, परिवर्तन, सब लिख लेंगे इस बात को। अब प्लानिंग करनी है। प्लानिंग में सबसे पहली अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए हमारे योग अभ्यास की, क्योंकि समय हमें चेतावनी दे रहा है, अंत की तरफ हम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ रहे या नहीं, भाई लोग ज्यादा जानते होंगे ना, सब सुनते रहते हैं। अंत की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अंत की एक प्रक्रिया है जो मैंने बहुत बार सुनाई है क्लासेज में, जिसको सब नहीं जानते। विनाश का रूप दिखाई देगा, फिर शांति होगी, फिर कुछ समय के बाद भयानक रूप दिखाई देगा, फिर शांति होगी। ये प्रभु प्लानिंग है इस ड्रामा में, ताकि ब्राह्मणों को वैराग्य हो जाए, ब्राह्मणों का पुरुषार्थ तेज हो जाए, जो मोहमत्व, जो जंजाल सबने बढ़ाए हैं जीवन में, वो जरा ढीले करने लगे कि अब तो चलना पड़ेगा, घर पड़ेगा। ये नहीं कि जाना है उसका आनंद लेंगे, भाई अब तो सब कुछ छूटेगा, चलना ही पड़ेगा, निकाल दो बुद्धि। ये सब समय कराता रहेगा, इसलिए एक चीज और होती रहेगी जो शुरू हो गई है, धीमी गति से शुरू हुई है, और मुझे लगता है 2025 तक उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। सुन ले ध्यान से आप, सभी ने जो विकर्म किए हैं जन्म जन्म, अच्छे कर्म भी किए, लेकिन जो थोड़े बुरे कर्म हुए हैं, जैसे वो आत्मा में प्रिंट होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, बाबा कहते हैं नूंद हो जाता है सब कुछ, ऐसे ही वो जो हमारा ब्रेन है ना, ये मस्तिष्क, इसमें भी प्रिंट रहते हैं। अब समय आ गया है, वो सब एक्टिव हो रहे हैं अंदर ही अंदर, एक्टिव होते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बहुतों को रात को नींद नहीं आएगी। शुरू है ये खेल, बहुतों को मानसिक रोग हो जाएंगे, बहुत ज्यादा मानसिक रोगों से पीड़ित होंगे लोग, क्योंकि वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा, ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाएगा, वो सोने भी नहीं देगा और कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न तरह के इफेक्ट मनुष्य को दिखाई देंगे, मानसिक रोग बढ़ेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास कोई दवाई नहीं जो हाइपर एक्टिव ब्रेन को शांत कर दें, कि डॉक्टर सुनता हो तो बताए है क्या दवाई दुनिया में, हाइपर हो गया है ब्रेन, मिशनरी मशीनरी अंदर की फास्ट चलने लगी है, उसको शांत करना किसी के बस का नहीं होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि मानसिक रोगों के शिकार हम न हो, परिवार न हो, योग बल से विकर्मों को जलाते चलें, ब्रेन भी फ्रेश होता चले, आत्मा भी पावन होती चले, दोनों जुड़े हुए आपस में। और जो योग नहीं करेंगे उनको ये तकलीफ बहुत हो जाएगी, ब्रेन हाइपर एक्टिव, समझते हैं ना अंग्रेजी का शब्द, बहुत ज्यादा सोचने लगेगा, और ये समस्या जैसे मैंने कहा बहुत बढ़ रही है, बहुतों को डिप्रेशन हो रहा है, बहुतों को यंग एज में बेचैनी हो रही है, बहुतों को डर पैदा हो रहा है, डर बहुत ज्यादा युवकों में ये ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसका कारण ये मोबाइल और लैपटॉप भी हैं। तो हमें योग की अच्छी प्लानिंग करनी है, मैं छोटी छोटी प्लानिंग आपके सामने रखता हूं, आपको जो जो पसंद आए वो कर लेना, हर एक को अपना अपना करना होता है, एक दूसरे को फॉलो कोई नहीं कर सकता, किसी को अच्छा ब्रेन है वो अच्छा योग कर सकता है, किसी ने अपनी बुद्धि में गंदगी ज्यादा भर ली है उनसे योग होता नहीं, किसी को पर चिंतन की आदत ज्यादा पड़ गई है उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, कोई तेरे मेरे में ज्यादा रहते आए हैं योग लगता नहीं, हर एक अपनी प्लानिंग करे, पर योगी बनना अवश्य है। अमृत वेले उठकर बाबा से वरदान लेना, कुछ दृढ़ संकल्प करना अपने मन में, ये नहीं करेंगे। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उन्हें ये पता चल जाना चाहिए कि मेरा योग न लगने का कारण कहाँ है, बीज क्या है, अगर बीज का पता नहीं चलेगा तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, सदा सदा ही शिकायत रहेगी योग नहीं लगता। मैं एक हंसी की कहानी सुनाया करता हूँ, एक माता जी की, पहले मब से 10 साल पहले आया होगा उसका फोन, भाई जी परिवार में विघन ये हैं, क्या करूं। मैंने उसको एक विघन विनाशक भट्टी की विधि बताई, ऐसा करो तुम योग। 2-4 दिन के बाद फिर फोन आया, मेरा तो योग लगता नहीं, आप कर दो मेरे लिए। मैंने कहा कितने साल से ज्ञान में हो, 40 साल से। मैंने कहा तो योग लगाने के लिए और कितने साल चाहिए, 40 में तो लगा नहीं, और 40 साल से ज्ञान में है तो आयु भी 70 के आसपास हो गई। विचार करना है, सहज योग कठिन क्यों हो गया है बहुतों को, बिल्कुल सहज है, शास्त्रों में योग सिखाया गया उसको भी राजयोग नाम दिया गया, उसमें तो किसी को ये ही नहीं पता मैं कौन हूं, भगवान कौन है और कहाँ रहता है, कहाँ योग लगाना, उसका क्या स्वरूप है, उसको ढूंढते ही रहते हैं लोग, हमें सब स्पष्ट है, सब पता है कैसे करना है, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, संबंध क्या, इसको कठिन मनुष्य स्वयं बनाता है। मैं कभी कभी अपना अनुभव सुनाया है, जब मैं मधुबन में समर्पित होके आया तो हमारा म्यूजियम बना था, तो रोज शाम को म्यूजियम में जाया करते थे, पहले तो म्यूजियम बनवाने में थे हम, वहीं छोटे थे हम, तो हम लोगों की ड्यूटी लगी थी सारा मोटा मोटा काम करने की, कहीं मिट्टी बनानी है, कहीं रंग भरना है, कहीं ये लक्ष्मी नारायण आदि बने हुए ना, उनको उनका बुत सा तैयार करके देना है उन्हें, तो मैं तब बहुत अच्छा काम किया, मैं सोचता था, देखो एक ही बात सुना रहा हूं कि मैं पांडव भवन शेयर म्यूजियम के लिए चला हूं, 10-12 मिनट लगते थे। मैं संकल्प करके चला कि मुझे 12 मिनट में अच्छी तरह से योगयुक्त रहना है। वहां तक पहुंच गए, पता चला योग तो हुआ ही नहीं। दूसरे दिन सोचा आज ये चेक करना है कि योग टूटता कहां है। ये प्रक्रिया मैंने एक मास तक चलाई, योग कहां टूटता है। जब मुझे कुछ काम नहीं है, मुझे पैदल पांडव भवन से म्यूजियम तक जाना है, मैं अकेला हूं, फिर भी मुझे तो 12 मिनट ही योग में रहना चाहिए, क्यों नहीं होता। तो बहुत सारे कारण निकल गए, उनको हटाया तो योग फर्स्ट क्लास हो गया। तो अपने को चेक करना, अपनी खोज, इसको ही लोगों ने स्वाध्याय कह दिया भक्ति में, अपनी खोज, मैं कहां गलत हूं, कहां गलत सोचती हूं मैं, कहां मुझे लक्ष्य भूल गया है अपना, क्या हुआ है मेरे साथ, कहां मेरे से गलती हो रही है। एक इसमें छोटी सी अनुभव की बात बताता हूं। हमारे वहां एक बुढ़िया माता थी, तो मैं आपको एक बार सुना रहा था अपने को कैसे देखेंगे। तो एक माता रहती थी बूढ़ी बहुत, डंडा रख लेके तो चलती थी, हम लोग भी छोटे थे उसे छेड़ भी देते थे कभी कभी, वो चिढ़ती थी बहुत। छोटे बच्चे बूढ़ों को छेड़ देते ना, चिढ़ा देते हैं, उसको चिढ़ाते रहते थे। आ गई किचन में डंडा ठक ठक करती हुई। अभी मेरे को एकदम हुआ, अरे ये आ गई, अब तो ये झगड़ा कर लेगी यहां कुछ। वो बैठ गई आगे, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी खुशी चली गई। अब मुझे समझ में आ गया कि अवगुण देखते ही खुशी खत्म हो जाती है, एक अच्छी सीख मिल गई। काम आई है जीवन में बहुत। ऐसे अपने को देखना, अपनी खोज करना, अपने को, अपनी कमियों को पहचानना, ये बहुत आवश्यक होता है। तो अपने को चेंज करेंगे, मैं आ जाता हूं योग पर। योग की सवेरे के अभ्यास के बाद जो सवेरे योग करेंगे वो तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे, लेकिन 10-10, 15-15 मिनट आप 3 या 4 बार और योग कर लें। जिन जो योग के शौकीन हैं और जो समझते हैं योग ही जीवन बदलने का तरीका है, योग से विकर्म विनाश भी होंगे, बुद्धि भी एकाग्र होगी, शांति भी होगी, घर का वातावरण भी बदलेगा, तो उन्हें टाइम निकालना चाहिए। देखो किसी घर में झगड़े होते रहे, कितना टाइम जाता है मनुष्य का, और उसी घर में आप योग के द्वारा शांति स्थापित कर दें तो सबका कितना टाइम बच जाता है। ध्यान देंगे इस पर बहुत ज्यादा, 10-10 मिनट तो अवश्य। नियम बनाने की जरूरत है, अपने को नियमों में बांधने की जरूरत है। टाइम सबके पास होता है, नियम, भाई सवेरे 6 बजे मुझे 10 मिनट योग करना है। नाश्ता वास्ता करके सभी भाई लोग बच्चे सब चले गए अपनी अपनी जगह, अब मुझे 15 मिनट योग करना है। ऐसा अपने अपने अनुसार जो आपकी दिनचर्या हो। बहुत सहज तरीका है योग युक्त जीवन बनाने का, और लास्ट जो आए हैं उनको फास्ट जाने का। मैं तो 10-20 साल वालों को भी लास्ट ही कहता हूं, अगर योग नहीं लग रहा तो लास्ट में पहुंच गए ना, स्थिति लास्ट है, फास्ट तो जाना ही पड़ेगा। स्मृति स्वरूप होना, यह है योग युक्त जीवन बनाना। स्मृति स्वरूप होना, स्मृति का अर्थ है जो कुछ बाबा ने हमें याद दिलाया है उसे याद करना। छोटे से उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट होगी बात। आपके जीवन में 10-20 साल पहले कोई दुख भरी घटना हो गई हो, वो आपको अचानक याद आ जाए तो वही रूप बन जाएगा ना, आपके चेहरे पर दुखों की लहर आ जाएगी, हो सकता है आप रोने भी लगे। स्मृति से स्वरूप बनता है। क्लियर है ना क्या होती है स्मृति और क्या होता है स्वरूप? स्मृति से स्वरूप बनता है। हम अपने लिए कुछ स्मृतियां नोट कर लें और उनमें से कम 5 को अपने साथ लेकर चलें जिनको याद करते रहें। जैसे बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, मैं आत्मा हूं ये तो दिलाई पहली, लेकिन स्मृति दिलाई तुम सृष्टि के आदि में देवता थे। हम कोशिश करेंगे याद आ जाए हमें, ज्ञान से तो हमने जान लिया। और ये याद तब आएगा जब हम बार बार अपने उस देव स्वरूप को सामने देखा करेंगे। स्मृति करते करते रियल बन जाएगी स्मृति, क्योंकि हम थे, ये कोई हमारी कल्पना नहीं है, सत्य है कि हम देवी और देवता थे। इसी में बाबा कई स्मृति दिलाते हैं और एक स्मृति जो बहुत आती है मुरलियों में, आप कैच करेंगे साकार मुरलियों से उसे, बच्चे तुम निर्विकारी देवता थे। ये स्मृति में लाते ही प्योरिटी बढ़ने लगेगी। जिनके ये प्रश्न है, हमारे इम्प्योर संकल्प बहुत चलते हैं, बहुत कुछ होता है, याद किया करें हम सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी देवता थे। अपना उस स्वरूप सामने ले आओ। जब हमारी पूजा हुई, दोनों को बाबा कहते हैं, तो देवियों के चित्र देखकर भी पापी लोग भी पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, कुछ समय के लिए अपने पाप को स्वीकार कर लेते हैं, मैं पापी हूं। वो हम ही तो हैं जिनके दर्शनों से भी ये हो जाता है। ऐसे थे हम, ये स्मृति दिलाई बाबा ने, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। इनको याद किया करें बस। ब्रह्मा बाबा के बारे में आपने सुना हो, भविष्य का नशा जितना ब्रह्मा बाबा को था उतना संसार में किसी को रहा ही नहीं अब तक। मैंने बहुत कोशिश की क्योंकि मुझे पता है सब हो ही नहीं पाता। वो मैं दादी जानकी के द्वारा बताई ही एक कहानी सुनाया करता हूं कि दिन के 3 बजे मधुबन पांडव भवन तो सबने देखा होगा, हिस्ट्री हॉल है, दोनों तरफ गलियां हैं, इन दादियों के कमरे गलियों के पीछे, हॉल के पीछे 3-4-5 कमरे बने हुए, वहां रहते थे। तो दादी जानकी 3 बजे दिन में वहां से अपने कमरे में जा रही थी तो अचानक देखा अंदर बाबा डांस कर रहा है। अब ये पीछे हट गई, भाई बाबा को अपनी मस्ती में रहने दो, लेकिन बाबा ने देख लिया, बुलाया, आओ बच्ची। बाबा आप क्या कर रहे थे? बच्ची बाबा को नशा चढ़ा हुआ है, मैं नारायण बनने वाला हूं, विश्व महाराजन। तो इससे क्या हो रहा था? विश्व महाराजन नारायण के सारे संस्कार उनमें आते जाते थे। स्मृतियां उन चीजों का आह्वान कर लेती हैं। ध्यान देंगे सभी आप, अगर बहनें याद करें, मैं वही हूं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, तो वही संस्कार आने लगेंगे, दाता के, वरदान देने के, शक्तियां देने के, प्यार देने के। ये स्मृतियां हैं। इसलिए मैंने माताओं को बहुत सिखाया, सुन ले फिर से जिन्होंने नहीं सुना, अपने घर में रहते हुए याद करना, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। देखना जादू इस स्मृति का क्या होता है, लेकिन रोज कई बार करना पड़ेगा और धीरे धीरे उस नशे में आके उस स्वरूप में आना है। मैं इस देवी हूं तो मुझे कैसे बोलना चाहिए, क्या इस देवी गुस्सा करेगी, क्या इस देवी चिड़चिड़ेपन में आएगी, क्या इस देवी के मुख से बुरे वचन निकलेंगे, चिंतन करेंगे। भाई लोग भी, मैं एक महान आत्मा हूं, बाबा ने याद दिला दिया, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। जैसे जैसे स्मृति आएगी मान्यताएं जीवन में आएंगी। ये सरल पुरुषार्थ की विधि है स्मृति स्वरूप होना। आप स्मृतियों की लिस्ट बना सकते हैं, हम लोग जब छोटे थे तो 25-30 बना लेते थे, याद करते थे उन्हें। बाबा ने स्मृति दिलाई, बच्चे ये 5000 साल का खेल पूरा हुआ, अब तुम्हें ये देह छोड़कर घर वापिस चलना है। याद आ जाए, 5000 साल की लंबी यात्रा पूरी की है। बाबा ने बहुत सारे स्वमानों की याद दिलाई जो बड़े बड़े गहन हैं। तुम कल्प कल्प के विजयी रत्न हो, बहुत गहन स्वमान हो गया ये। बहुत लोग सोचते हैं ये माया नहीं जीती जाती, वो माया नहीं जीती जाती। आप एक प्रयोग करें, रोज सवेरे उठते ही संकल्प करो, बाबा ने तिलक लगा दिया और कहा बच्चे कल्प कल्प के विजयी रत्न हो, माया जीत हो, माया हारती जाएगी। तो स्मृतियां दिलाई हैं, तुम पूर्वज हो, तुम ही सृष्टि के आधार हो। बहुत बड़ी स्मृति है, छोटी नहीं है। तुम इस सृष्टि के आधार हो, आधार माना फाउंडेशन। और इसका दूसरा अर्थ है तुम्हारे एक एक संकल्प का प्रभाव पूरी सृष्टि पर जा रहा है। तुम्हारी जो स्थिति बन रही है उसका प्रभाव सारे संसार पर जा रहा है। बाबा के शब्दों में, जैसी तुम्हारी स्थिति वैसी ही संसार की स्थिति हो जाती है। इतने बड़े हैं हम, इतने महान हैं। पीछे बाबा की मुरली में आया, जो बहने सुनाती है मुरली और ध्यान दिया हो, तुम बच्चे इस धरा के चमकते हुए सितारे हो, तुम नक्षत्रों से भी महान बलवान हो। ये सब थे, बड़ा मजा आ गया मुझे सुन के। नक्षत्रों से महाबलवान हो तुम, हम अपने को समझते ही नहीं, हम भी पावरफुल हैं। ये बात आ गई, वो आ गई, छिपकली कमरे में आ गई तो न सो रहे न सोने दे रहे हैं। कई बहनों का ऐसा हाल है, छिपकली बेचारी डर के भागती फिर रही है और ये डर के सो नहीं रहे हैं। कौन पावरफुल हुआ, छिपकली या बहने? छिपकली पावरफुल हो गई। तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। तो ये स्मृतियां, कोई भी 5 चुन लेना अपने लिए। तुम पवित्रता की देवी हो, बहुत सुंदर स्मृति है, उनको याद करते रहना, योग फर्स्ट क्लास हो जाएगा। जीवन के ऐसे सिद्धांत बना लेना, कोई 5, कोई भी 5। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, पवित्रता के मार्ग पर कदम रखा है, पीछे नहीं हटाएंगे। जिस रास्ते पे एक बार चल दिए, अब चलते ही जाएंगे जब तक मंजिल पर न पहुंचे। बहुत सुंदर सिद्धांत है जीवन का। कितने भी कष्ट सहने पड़े, लोग गाली दें, ग्लानी करें, मुझे तो संपूर्ण पवित्र बनना ही है। मुझे अपने मुख से किसी को कटु वचन बोलकर दुख नहीं देना है। सिद्धांत बना लो अपने जीवन का। मैं इस देवी हूं, दाता हूं, वरदाता हूं, मुझे वही देना है। मैं पूर्वज हूं, मुझे तो सबकी पालना करनी है। भाइयों को सबको अनुभव है, जिनको पोतरे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बड़े हो गए ना आप, सबकी पालना करनी होती है। पालना के लिए तो आप धन कमा रहे हो, पालना के लिए तो बहुत मेहनत करते हो। पूर्वज के संस्कार हैं, अब हम हैं सृष्टि के पूर्वज, हमें सबको शुभ भावनाओं का दान देना है। कुछ वो भी रख सकते हैं जो हमें नहीं करना है, जैसे मुझे किसी से वैर भाव नहीं रखना है, मुझे पर चिंतन में नहीं जाना है, मुझे केवल अपने को देखना है, दूसरों को नहीं। नियम बना दो कुछ, ऐसे 5 सिद्धांत कोई भी बनाकर उन पे जीवन को चलाएंगे तो जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। तो अपने को सुखी बनाना अपने हाथ में, पावरफुल सबको बनना है। बंधन मनुष्य खुद बनाता है, बंधन ज्यादा होते नहीं, मनुष्य छोटी छोटी बातों में बंधा रहता है। मुझे याद है बाबा की एक पावरफुल बात मैं सुनाया करता हूं। कोई कन्या आई बाबा के पास जब बाबा साकार में थे, कहा बाबा बहुत बंधन है। अब बाबा ने उसका भविष्य देखा होगा या क्या, बड़े उमंग से बोल दिया, तुम बकरी हो क्या जो रस्सी में बांध ले कोई तुम्हें, तुम शेरनी हो, सब बंधन तोड़ के भाग सकती हो। आ गई बंधन तोड़ के, बंधन मनुष्य ने खुद बनाए होते हैं। एक बात और आपको कहना चाहता हूं, ये तो आप सब करेंगे फास्ट जाने के लिए और लक्ष्य बना लेंगे मेरा योग का चार्ट 4 घंटे से अधिक हो जाए रोज, ये सब स्मृतियां मिला के, स्वमान 500 रुपयों का अभ्यास, बैठ के योग करना, ये सब मिलके 4 घंटे उससे अधिक होता रहे। इसको आपको गिनने की जरूरत नहीं, आप थोड़े अच्छे अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे जीवन योग युक्त होता जाएगा। एक योगी के जो लक्षण होते हैं वो सब जीवन में आते जाएंगे। गीत सुन लेना, योगी के क्या लक्षण होते हैं। योगी, एक गीत है योग पर बहुत लंबा चौड़ा, वो सुन लेना। मुझे पहली लाइन कम याद आ रही है। एक तो वो है योगी वही है सच्चा, एक और है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, सुन लेना उसको। तो अच्छे लक्षण, योगी माना जो नम्रचित्त हो जाए, जो सहज जीवन जीना सीख ले, जिसमें निर्मलता आ जाए, जिसकी दृष्टि में सबके लिए स्नेह समा जाए, जो शुभ भावनाओं से भरपूर हो जाए, ये सब हैं उस गीत में बहुत अच्छे। ये सब संस्कार जीवन में आते जाएंगे। इस जीवन में बाबा को यूज करना, बाबा की मदद लेना, ये हमें सीख लेना है। बाबा को यूज करना, मैं आपको महावाक्य की याद दिला दूं, जब भी मुश्किलात आए, बोलो आगे, दिल से कहना मेरे बाबा मेरे साथी। आगे क्या कहा था? हाँ, अब जैसे बाबा ने कहा था वैसे मैं कह रहा हूं, आ जाओ मदद करो, हाथ जोड़ के नहीं, आ जाओ बाबा मदद करो ना, ये नहीं। कैसे कहेंगे? अधिकार से, याद रखना है सब, अधिकार से। तो चौथी लाइन आखिरी लाइन क्या है उसमें? बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। अब बोलो इससे सस्ती बात और कुछ कह सकता है वो? सरल, अरे मैं हूं ना, पर तुम बुलाते ही नहीं। तो बाबा को कहना पड़ा, बच्चे 1000 भुजा वाले के पास नहीं आते, 2 भुजा वालों के पास जाते हैं। तो बाबा देखता रहता, जाओ ले लो मदद, कितनी मिलती है तुम्हें। लेकिन अगर बाबा पर ये अधिकार हम बना दें अपना, ये अधिकार बनाना होता है ना, जैसे आपके छोटे बच्चे कभी कभी आपसे चिपट जाएंगे, पापा ये चाहिए मुझे, तो ये ला के दो, करते हैं माताओं को बच्चे या नहीं, और आपको करना ही पड़ता है। अधिकार और अधिकार की फीलिंग हमें तब बढ़ेगी जब हम इस चीज को बढ़ाते चलेंगे कि वो मेरा है। देखो छोटी ये बात है, मेरा बाबा सबसे छोटी बात होती है। उनको भी सिखाया जाता है जिनका योग नहीं लगता, मेरा बाबा करते रहो। पर मेरा है भगवान, जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है, मेरा खुदा दोस्त है, वो मेरा सच्चा पिता है, मेरा। इसको बढ़ाते चलो, अधिकार बढ़ता चलेगा। फिर जब अधिकार से आप बुलाएंगे ना आओ, भागा चलाएगा। शास्त्रों में दिखाया ना, बिना चप्पल ही भागा है। विष्णु जी को दिखाया, चप्पल भी नहीं ध्यान दिया, भाग एकदम। भक्त पर भीड़ पड़ी है, तो जब भक्ति में उसके द्वारा मदद होती रही तो अब क्यों नहीं होगी। लेकिन अपनापन, बहुत विश्वास, अधिकार की भावना को बढ़ाना होगा। अब हम चाहेंगे क्वेश्चन आंसर लें, बैठे हैं क्या भाई, आ जाओ।